مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو بڑا دن اور نیا سال مبارک ہو۔ فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم مبارک منسٹری کی جانب سے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ 2013 آپ سب کے خاندانوں کے لیے، کام کاج کے لیے اور شخصی زندگی کے لیے تازگی، خوشی، شادمانی کا سبب بنے۔ جے مسیح کی۔ آج ایک خاص بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے دل پر بڑا بوجھ بن گئی۔ صبح سویرے آج کے دن میرا ایک دوست میرے ساتھ ٹیلی فون پہ مخاطب ہوا، اور اس نے جیسے ہی مجھے رسمی طور پر ہیلو ہائی کیا تو میں نے بھی رسمی طور پر اسے سلام دعا کا جواب دیا، اور ساتھ ہی اس کو کہا کہ آپ کو بڑا دن مبارک ہو۔ تو اس نے ایک دم سے مجھے کہا کہ میں نے تو 3 سال سے بڑا دن منانا، کرسمس منانا چھوڑ دیا ہے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ تو ایک بائبل ٹیچر ہے اور ایک بڑے بائبل کالج میں یہ پروفیسر ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا چھوڑ دیا، آخر کیا وجہ ہے؟ تو وہ ہماری گفتگو کافی دیر چلتی رہی۔ تو میں نے اسے کہا کہ میرے دوست، آخر وجہ کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے 25 دسمبر کو منانا، یا کرسمس کو منانا، یا عید الولادت کو منانا چھوڑ دیا، اور وہ بھی برابر 3 سال سے، تو آخر کیا خیال ہے، کیا اس کے پیچھے آپ کی سوچ ہے؟ تو کہنے لگا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بلا وجہ اس دن کو منا رہے ہیں، جبکہ 25 دسمبر کا تو کوئی خیال نہیں، کوئی پکی بات نہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ 25 دسمبر کا دن اگر خاص بات نہیں تو، لیکن مقرر تو ہوا، اور عالمگیر کلیسیا اس کو وہ منا رہی ہے، اور تمام مسیحی لوگ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کو مناتے ہیں، اور یہ کوئی نجات کی بات نہیں ہے، یہ ایک یادگار ہے۔ اور یادگاری کے تعلق سے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک مقدس محفل ہے، جیسے یوئل نبی کی معرفت 2:15-16 آیت میں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا کہتا ہے کہ مقدس محفل فراہم کرو۔ تو مقدس محفل کی بات ہے، 25 دسمبر کی بات نہیں۔ اگر یہ 26 ہو، 24 ہو، نومبر ہو، یا اگست ہو، یا جنوری ہو، اس کی بات نہیں ہے۔ بات ہے کہ تمام بزرگان دین، تمام خدا کے خادم، عالمگیر کلیسیا اس چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ ایک دن مقرر کیا جائے جب پوری قوم، مسیحی قوم، عالمگیر کلیسیا اس دن کو منائے۔ تو سالہ سال سے اس کو منایا جا رہا ہے، اس مقدس محفل کو۔ آپ اس کو کرسمس نہ کہو، آپ اس کو بڑا دن نہ کہو، آپ اس کو ولادت مسیح نہ کہو، صرف یہ کہو کہ یہ مقدس محفل مسیحوں کی ہے، جس دن مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں آئے، جس دن یہشوا اس دنیا میں ہماری نجات کا باب کھولنے کے لیے آئے، کیونکہ نجات کا باب کوئی کھول نہیں سکا۔ تو کہنے لگے ہاں یہ بات ہے، لیکن میں نہیں اس کو پسند کرتا۔ میں نے کہا میرے دوست، جہاں سے بھی آپ نے یہ بات سنی ہے، یہ بڑی خطرناک ہے، یہ کسی دشمن کی بات ہے، یہ کسی مخالفین نے یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ 25 دسمبر کو نہ منایا جائے۔ اس کے پیچھے اگر دیکھو تو تقریباً 19-20 سچائیاں ہیں جس پر پانی پھر جاتا ہے، اور وہ سچائیوں کو اگر آپ غور سے، سنجیدگی کے ساتھ سامنے رکھیں گے تو آپ سمجھو گے کہ یہ مقدس محفل کو منانا، مقدس محفل کی اہمیت کو دوسروں کے سامنے اجاگر کرنا، دوسروں کو اس کو ماننے کی تلقین کرنا، یہ کتنا ضروری ہے۔ کیونکہ مسیح خداوند نے اس دوسرے لوگوں کے سامنے کہنے کے تعلق سے بات کہی، لوکا کی انجیل اس کا 12 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا۔ تو وہ 25 دسمبر کی بات نہیں، وہ کوئی بھی दिन हो सकता है, लेकिन जब पूरे सब पूरी जो मसीह कौम है या पूरी दुनिया के क्रिश्चियन जो हैं या पूरी दुनिया के जो बिलीवर हैं, वो उन्होंने एक मुकद्दस महफल का एक दिन का यादा किया, मकरर किया, जिसको हम 25 दिसंबर कहते हैं, तो वो कह लो कि वो दिन इकरार का दिन है कि उस दिन हम इकरार करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए आया। 25 के दिन या इस मुकद्दस महफल के दिन वो लोग भी इकरार करते हैं, वो लोग भी गवाही देते हैं जो साल हा साल कभी चर्च नहीं जाते, कभी उनका बाइबल के साथ ताल्लुक नहीं, कभी बाइबल को वो सामने नहीं रखते, लेकिन उस दिन वो भी नहा धो के नए कपड़े पहन के घर में कोई लाइट जलाते हैं, कोई केक काटता है, कोई पटाखे चलाता है, कोई कुछ करता है ताकि साबित करे कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मेरे लिए भी यहोशुआ इस दुनिया में आया, मेरे लिए भी वो मेरा मसीहा इस दुनिया में आया। अब ये गवाही का दिन काट दिया जाए और कहा जाए ये बेमैनी है, तो इससे इसके बारे में थोड़ा सा संजीदगी से गौर करने की बात है कि यसाया की किताब उसका 43वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, मुझे याद दिला, आ हम आपस में बहस करें, मुझे याद दिला। खुदा का कलाम जो है ये एक आयत सिर्फ एक डायरेक्शन को नहीं वाजे करती, बल्कि एक आयत कई चीजों को जाहिर करती है। पेशेंतगोइयों का काम, नबियों की बातें, फरिश्तों की का इल्हाम, एक ही वक्त में बहुत सारे रंग, 7 का अदद जो बाइबल में कहा गया है या इब्रानी में जो है लफ्ज है उसका अदद 7 का है, तो उसके बारे में देखा जाता है कि कितना यहोवा का वो 7 कलर फुल मल्टी कलर जो है वो इस बात में आता है जिसके बारे में कहा गया, आ मेरे साथ बहस कर। इसको आप किसी तरह से भी जान सकते हैं कि मेरे साथ बहस कर, मेरे साथ बात कर, मेरे साथ बैठ, मेरे साथ रिफाकत रख कि तूने किस किस वक्त मुझे इज्जत दी, किस किस टाइम पे तूने मेरा जिक्र किया, किस टाइम पे तूने पूरी कौम के साथ मिलकर मेरी वाह वाह की और मेरे नाम को बड़ा ऊंचा किया। तो इस बात के लिए ये दिन, इसको भी इसी तौर पे भी माना जा सकता है। फिर गिनती की किताब उसका 15वां बाब और उसकी आयत है 13-15 तक पढ़ें, तो वहां पर लिखा है कि राहत अंगेज खुशबू की कुर्बानी। ये जो राहत अंगेज है, राहत का मतलब है खुशी, अंगेज पंचाना, खुशी पंचाने की ईद, राहत अंगेज खुशबू, वो खुशबू, वो खुशी की खुशबू जो है जिससे खुदा को, वो खुदा की मकर्रा ईद नहीं थी, वो मकर्रा ईदों में शामिल नहीं, राहत अंगेज खुशबू चलती ही रहती है, वो खुशबू कुर्बानगाह से नहीं बल्कि वो बखूरदान से उठती रहती है, वो होंठों का शुक्राना है, वो ईदों की बात नहीं, वो बल्कि वो है जो दिल की खुशी से बयान किया जाता है। तो चलो इसको ऐसे ही समझ लो कि ये जो 25 का दिन कैथोलिक की तरफ से या पूरी आलमगीर कलीसिया की तरफ से या मसीहों की तरफ से या जो लीडरान हैं उनकी तरफ से मकरर किया गया, तो इसके आगे लिखा है गिनती की किताब उसका 30वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, अपनी मकरर की जो हमने खुद ईदें मकरर की हैं, लिखा है उसको मान, और अगर वो ना मानेगा तो ये गुनाह है क्योंकि तूने खुद मकरर की, ये तूने खुद मकरर की। और खुदा एक्सपेक्ट करता है, खुदा तवक्को रखता है, खुदा चाहता है, खुदा आपको इस दिन की अजाफी बरकतें देना चाहता है। तो अगर आप ये कह दें कि नहीं ये मनाना जरूरी नहीं, अच्छा अगर ये मनाना जरूरी नहीं तो क्यों नहीं मनाना जरूरी? हमने तो पहले सच्चे दिल से तो खुशी के साथ महफल का एहतमाम किया, आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ बच्चों, गलियों में चलें, गीत गाएं और चरागाह करें और लोगों को इस बात के लिए आगाह करें, लोगों को गवाही दें कि आज मेरा यहोशुआ, आज मेरा यीशु, आज मेरा मसीहा इस दुनिया में आ गया ताकि मैं बच जाऊं। तो इसका अब दूसरे ईमानदारों ने यह कहना शुरू कर दिया, मैं नहीं कहता कि वो ईमानदार नहीं, शायद उनके उनको शैतान ने अपने कंट्रोल में कर लिया, ताकि दूसरे खुदा के लोगों को वर्ग लगाकर, दूसरे खुदा के लोगों को परेशान करके इस सच्चाई पर पर्दा डाला जाए, क्योंकि खुदा के लोगों के अंदर भी शैतान काम करता है। इसका सबूत आपको पता है, आप जानते हैं एक ही वक्त में पतरस यीशु को कितने बड़े अलकाब देता है, तू जो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, और आगे कहता है खुदा ना करे कि ये ऐसी घड़ी तुझ पर आए। तो मसीह ने कहा है शैतान दूर हो, है वो यीशु का शागिर्द, रहता वो यहोशुआ के साथ है, और एकदम से आवाज वो किसी और की बोल रहा है। इसी तरह से आप पहला सलातीन और उसका 13वां बाब उसकी 11वीं आयत पढ़े तो वहां पर दो नबियों का जिक्र है। वहां जो 13वां बाब आप उसके उसको स्टडी करें, उसको पढ़ें, तो वहां पर दो नबियों का जिक्र है। एक नबी को खुदा ने कहा कि तू जा और ये जाके बादशाह को कह दे तूने खाना नहीं रास्ते में, किसी को सलाम नहीं करना, किसी से पानी नहीं पीना। और दूसरे नबी को शैतान ने इस तरह से चक्कर दिया कि वो एकदम से उसने उसको कहा, उस नबी को, कि देख मुझे भी खुदा ने कहा है कि तू आ मेरे घर में आ और खाना खा ले, मेरे साथ बैठ आराम कर। मकसद था कि खुदा ने इसको कहा है कि अगर तूने रास्ते में किसी से खाया मिला बैठा तो तू मरेगा। अब दूसरे नबी को शैतान ने इस चक्कर में अपने हाथ में फंसा लिया, अपने हाथ में काबू कर लिया कि अब तू इसको खुदा के बंदे को इस तरह का वर्ग लगा कि ये शक में पड़ जाए, और जब वो शक में पड़ जाएगा तो बाद में यकीनन मरेगा, तू मरेगा क्योंकि तू मेरे हाथ शैतान के हाथ में चला गया, और वो मरेगा क्योंकि उसने तेरी बात मान ली। अब इस सच्चाई को अगर हम इस मुकद्दस महफल को सेलिब्रेट ना करें, मुकद्दस महफल का चर्चा दूसरों में ना करें, चिरागा ना करें, धूम ना मचाएं, तो खुदा कहता है अगर तेरी कायम की हुई ईद तूने ना मनाई तो तू मरेगा, ये तेरे लिए गुनाह है। और फिर क्योंकि खुदा ने नहीं मुकर्रर किया, हमने खुद मुकर्रर किया, और जो हमने मुकर्रर किया या हमारे लीडरान ने मुकर्रर किया, मुकद्दसीन ने मुकर्रर किया, खुदा ने उस पर मोहर कर दी, जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं हाजिर हूं। उन्होंने यीशु की अजमत के लिए, यीशु की पैदाइश के लिए, यीशु के इस दुनिया में आने का दिन मुकर्रर किया। दिन कोई भी उस खुदा का तो पैदाइश का दिन नहीं होता, लेकिन उसने जब जिस्म इख्तियार किया तो उसकी पैदाइश का दिन मुकर्रर होना लाजम था, और जब लाजम था तो फिर ही पहले दिन मुकर्रर हो तो फिर उसी से 8 दिन मुकर्रर होंगे। क्या 8 दिन के बाद उसका खतना किया गया? जब दिन ही नहीं मुकर्रर हुआ तो इसका मतलब है उसका खतना भी नहीं हुआ, और जब दिन ही मुकर्रर नहीं हुआ तो इसका मतलब 12 साल का जब हुआ तो उसने यहूदियों को जो जवाब दिए वो भी नहीं हुए, और जब वो दिन भी मुकर्रर नहीं हुआ तो 2.5 साल के या 2 साल के या छोटे बच्चों को कत्ल किया गया वो भी नहीं हुआ। जब दिन ही मुकर्रर नहीं तो यहूदियों के जो बादशाहों के बादशाह, हम मसीह को कहते हैं कि वो बादशाहों का बादशाह है, तो जो मजूसी आए, मजूसियों ने आके उसको जो नजराने दिए सोना लोबान और मोर, वो भी हम साबित नहीं कर सकते क्योंकि वो तो पैदा हुआ तो फिर वो उसको सजदा किया। कोई भी दिन है वो पैदा हुआ, लेकिन साहब ने एक दिन मुकर्रर कर लिया जिस दिन हम इकट्ठे हों। इसलिए मेरे दोस्तों थोड़े अलर्ट रहें, होशियार रहें कि कहीं कोई हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे लीडरान शैतान के हाथ में तो नहीं आ गए, ताकि 19 सच्चाइयों के ऊपर पर्दा डाला जाए। जब ये दिन मुकर्रर ना किया, ना हम सेलिब्रेट करेंगे, ना लोगों को बताएंगे, तो इसके मैं थोड़ा सा आपके साथ इसको हवाले इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आप सब जानते हैं, अगर हवाले चाहिए तो मेरा एड्रेस है, उस एड्रेस पे आप मेरे साथ रابطہ कर सकते हैं, मैं पूरे तौर पर इसकी स्टडी आपके साथ कर सकता हूँ। मैं खुदा का खादम हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूं, तो इस पर मुझे फिक्रमंदी है कि हम कहीं वो सलातीन वाले दो नबियों की तरह, दोनों खुदा के लोग थे, दोनों खुदा के बंदे थे, दोनों नबी थे, लेकिन दोनों ही शैतान के हाथ में आ गए। एक खुदा की ताबेदारी करता हुआ वर्ग लगाया गया, एक खुदा का नबी है जो शैतान के हाथ में आकर दूसरे को वर्ग लगा रहा है, और दोनों का मजाक बन गया। एक मर गया और दूसरा झूठा ठहरा, वो खुदा के सामने गुनाहगार करता हुआ है, वर्ग लगाया गया। एक खुदा का नबी है जो शैतान के हाथ में आकर दूसरे को वर्ग लगा रहा है और दोनों का मजाक बन गया। एक मर गया और दूसरा झूठा ठहरा, वो खुदा के सामने गुनाहगार बन गया। अब हम किस तरह से, मैं इस बात को थोड़ा आपके साथ शेयर करता हूं कि अगर हम इसको ना मनाएं, और कौन है जो कहता ना मानूं, तो कितनी उसकी ये कितनी बिदत, किस तरह की बिदत, कितनी बुरी चीज, कितना बुरा डेंजरस जहर है जो इंजेक्ट कर रहा है कि स्लोली स्लोली, जिस तरह एक दफा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी एक किताब में लिखा, उसने कहा कि अगर तुम ये साबित कर दो कि जो मसीही हैं वो मान जाएं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा, तो ये आप समझ लो कि आपने मसीहत की साफ लपेट दी, मसीहत खत्म हो गई। जब मसीह जी नहीं उठा तो हम किसका इंतजार करते हैं? इसी तरह ये दूसरा कोई टीका है, ये दूसरा कोई जहर है, ये दूसरा कोई वायरस है, ये दूसरा कोई ऐसा मुखालफ है जो शैतान के हाथ में आ चुका है और जिसका असर, जिसका वायरस, जिसका जरासीम तमाम मकदसीन में और उनकी न्यू जनरेशन में जो असर कर रहा है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये सच्चाइयां जो है वो डिम हो जाए और एक वक्त आ जाएगा कि ये फेरीटल हो जाएगा, ये मनगढ़ंत कहानी बन जाएगी। यार जब वो पैदा ही नहीं हुआ तो कौन, कब उसका खतना हुआ? जब वो पैदा ही नहीं हुआ कौन आया उसको सजदा करने के लिए? जब वो पैदा ही नहीं हुआ तो क्यों यरूशलम के लोग परेशान हो गए? जब वो पैदा ही नहीं हुआ क्यों हेरोदीस ने इतने बच्चों को मरवा दिया? जब वो पैदा ही नहीं हुआ तो क्यों उसको वो इजिप्ट को यूसुफ लेकर अपनी बीवी मरियम को चला गया? ये सब झूठ है। जब वो पैदा ही नहीं हुआ तो जरा मैंने ये लिखा है, मैं आपके सामने इसको पढ़ देता हूं कि सबसे पहली बात जो है, पहला पॉइंट जो है वो ये है कि बादशाहों का बादशाह ना माना जाए, ये किसी की शरारत है, ये शैतान की बात है, ये उसके करिंदों की बात है कि वो बादशाहों का बादशाह ना माना जाए। क्योंकि जो है, जो मजूसी थे, जो मजीशियन थे, जो इल्मे फलकियात रखने वाले थे, जो जो बिलीवर नहीं थे लेकिन आलम थे, हकीम थे, वाइज थे, उन्होंने इस बात को तहकीक किया और वो सोना लेकर आए और वो ढूंढते फिर रहे हैं, और आके जब वो उस सितारे की रहनुमाई में आए, तो जब वो पैदा ही नहीं हुआ तो सितारा भी नहीं था, जब वो पैदा ही नहीं हुआ तो मजूसी आए भी नहीं, और वो अगर आए हैं तो ये बात है कि उन्होंने आके यरूशलम में पता किया कि वो बच्चा कहां पे है, जिसकी जिनकी आवाज से हेरोदीस बादशाह भी डर गया। ये आप सारा किस्सा जानते हैं, सारे बात जानते हैं कि ये इल्हाम में क्या है और कलाम में क्या है। बादशाह डर गया, उसके लोग डर गए, उसके जो यहूदी आलम थे वो डर गए। अब वो यहूदी आलम जो है वो तहकीक कर रहे हैं कि किस मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। तो ये कहा जाए कि कहां होनी चाहिए का, तो इसका मतलब नबी की जो जो नबियों ने अंबिया असगर अंबिया अकबर में जो जो खुदा के रूह ने बात डाली और उन्होंने वो इल्हाम के तौर पे लिखा हमारे लिए कलम बंद किया, वो भी डिम हो जाए, वो भी रह जाए। और फिर वो जो मजूसी जब उन्होंने सोना पेश किया, तो वो इस वजह से हम यीशु को बादशाहों का बादशाह मानते हैं, क्योंकि वो किंग थे। और पुराने दौर में, पहले वक्तों में ये होता था कि जो बादशाह था, बादशाह को एक जंगजू होना चाहिए था, बादशाह को इल्मे फलकियात का होना चाहिए था, बादशाह को जो है वो हर तरह से दूसरों से ज्यादा सुपीरियर होना चाहिए था, दूसरों से ज्यादा आलम होना चाहिए था। तो जब इस तरह के बादशाह आए और उन्होंने आके यीशु मसीह को सोना पेश किया, यीशु मसीह के सामने नजराना रखा और यहोशुआ को सजदा किया, इसका मतलब है कि ही इज ए किंग ऑफ किंग, वो बादशाहों का बादशाह है। अगर हम उसके दिन को नहीं मनाते, उसकी पैदाइश को नहीं मनाते, चलो हम कहते हैं हम 25 को नहीं मनाते, तो कब मनाएं? ना मनाएं, यही बात है ना, कि 25 ना मनाओ। अच्छा जी आप बता दो कौन सा मनाएं? नहीं नहीं नहीं, मनाना ही नहीं चाहिए। भाई गौर करो, तुम कहां पे हो? ना मनाओ तो उसको बादशाहों का बादशाह भी ना नहीं मना सकते ना। फिर दूसरी बात में, उसको जो लुबान पेश किया गया, जो लुबान है वो मसीह को जो हाई प्रीस्ट बयान करता है, सरदार कहन पेश करता है। और अगर वो सरदार कहन नहीं तो पूरी कुर्बानी नहीं। तो इसका मतलब है कि लुबान वाली बात भी छोड़ दो, क्योंकि पैदाइश नहीं मानेंगे तो लुबान कब नजर हुआ? जब नजर नहीं तो वो इल्हाम को भी नहीं मानेंगे कि वो सरदार कहन है हमारा, हमारे लिए निजात को कंप्लीट करने वाला है। और फिर उसी पहली बात में अभी पैदाइश पे कि उसको मुर पेश किया गया जो कफन दफन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसका मतलब है वो मरेगा लेकिन सड़ेगा नहीं, जैसे कि दाऊद ने अपने जबूरों में कहा कि उसके सड़ने की नौबत ना पहुंची। तो इसका मतलब है जी उठने की बात है। अगर हम मसीह के पैदा होने के दिन को नहीं मानते तो उसके जी उठने के दिन को भी नहीं मान सकते। वो भी हवा की बातें हैं, वो भी इधर उधर की बातें हैं। ये कैसी प्लानिंग है कि 25 को तो खत्म करो, उसके पैदाइश के दिन को तो खत्म करो और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ, किसी की ये बात बयान की जाए कि वो पैदा ही नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? और नबियों की बातें जितनी पुराने अहदनामा से हम देखते हैं कि जितनी नबूवतें थी, जितना इल्हाम था, उस पर भी लाइन लग जाती है, उस पर भी लकीर फिर जाती है। और फिर जब यीशु मसीह के, वो रूमियों की तारीख है 25 दिसंबर जो मकरर किया गया, या उसकी पैदाइश का दिन जो मकरर किया गया, रूमी हुकूमत उस वक्त सुपर पावर थी। और उस वक्त जो हेरोदीस ने वो बच्चों को मरवाया, तो वो उस वक्त की बात है कि हेरोदीस जो है वो तारीख लिखी जाती थी, वो कोई मोहल्ले की बात नहीं। आजकल तो मोहल्ले की बातों को भी अखबारों में लिखा जाता है, आजकल तो उनको भी कवरेज दी जाती है। तो उस वक्त वो बादशाह की बात है, उसमें वो तारीखदान बैठे होते थे पास, वो लिखते थे। और जब वो बड़ी खून रेजी हुई मासूम बच्चों के साथ, तो क्या वो डेट लिखी ना गई, वो तारीख लिखी ना गई? ये कोई मोहल्ले की बात नहीं, ये किसी गांव की बात नहीं, अनपढ़ों के महफल की बात नहीं, ये बादशाहों की बात है। फिर अगर वो खून रेजी नहीं हुई तो फिर यीशु को और मरियम को लेकर यूसुफ मिस्र में नहीं गया। और जब मिस्र में गया, अगर मिस्र में नहीं गया तो वो जो खुदा ने अपने नबी की मार्फत कहा कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुला लिया, तो जब वो गया ही नहीं तो किस तरह बुला? इसका मतलब है खुदा की उस बात पर भी लाइन लग गई। अच्छा, फरिश्तों ने पैगाम दिया गडरियों को, चरवाहों को, और बड़ा पैगाम दिया, आलमे बाला पर होशना और जमीन पर सुला उनसे जिनसे खुदा राजी है। इसका मतलब है ना आलमे बाला पर होशना हुई, ना वो खुशी के नारे मारे गए। ये फरिश्तों का पैगाम भी झूठा निकला, क्योंकि पैदा होने की तो बात ही नहीं, कब पैदा हुआ, कब गडरिए आए, कब किसी ने ये फरिश्तों के भी पैगाम पहुंचाने की बात, फरिश्तों का पैगाम सुनना, फरिश्तों की बातों को मानना, इस पर भी लाइन फेर दी गई। फिर ये साबित किया जाए कि मसीह के लोग पैदाइश के दिन से ही कितने मुखालफीन थे, इस पर भी लाइन फेर जाएगी। कि जब हम ये देखते हैं कि जो हेरोदीस का जालम होना या उसके जुल्म की जो पहचान होती है वो उन मासूम बच्चों का कत्ल है, अगर ये मसीह की वलादत के दिन को मनाना बंद किया जाए तो पीछे हाथ उनका है जिनके ऊपर से पर्दा उठ रहा है कि ये लोग कितने जालिम थे, ये कितने किस तरह की हैवानी कुव्वत वाले लोग थे, किस तरह के साइको थे, किस तरह से ये कमजोर दिमाग के थे कि इन्होंने मसीह की पैदाइश पर कितनी मुखालफत की। असल में इस बात पर पर्दा डाला जा रहा है। और फिर आगे क्या है कि यूसुफ जो है वो फरिश्ता उसको आगाह करता है, और फरिश्ता जो है वो यूसुफ को कहता है इस बच्चे को लेकर तू मिस्र को चला जा, अगर पैदा ही नहीं हुआ तो बच्चा कौन सा बच्चा, कौन उसको लेके गया? फरिश्ते की बात भी, इल्हाम की बात भी, समझ लो कि इल्हाम पर पक्के तौर पे मोहर लग गई कि ये कुछ भी नहीं, और अगर वो मिस्र को नहीं गया, मिस्र के बाद फिर वापस नहीं आया, और उसके बाद हेरोदीस फिर डर गया। हेरोदीस डरने वाला नहीं है, ये यूसुफ डर गया। लिखा है कि फरिश्ते ने उसको बताया, क्योंकि यूसुफ ले जाना चाहता था यरूशलेम में, और जो जब उसने सुना कि अभी तक वो है, तो वो डर गया और वो बच्चे को और उसकी माँ को लेकर नासरत में चला गया, जिसके बारे में बाइबल में लिखा है कि वो नासरी कहलाएगा। अगर वो पैदा ही नहीं हुआ तो वो मिस्र कैसे गया? जब मिस्र में नहीं गया तो फिर वो नासरत में कैसे चला गया? अगर वो नासरत में नहीं है तो फिर वो नासरी कैसे कहलाया? ये तमाम बातों का एक लिंक है, और इसके पीछे जो बात बराबर चल रही है वो है बाइबल को झूठा ठहराना, खुदा के इल्हाम पर कीचड़ उछालना। क्योंकि दानियल की किताब में लिखा है कि वो 62 हफ्तों के बाद ममसू कत्ल किया जाएगा। जब वो पैदा नहीं हुआ तो उसके 62 हफ्ते आप कैसे बना सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा, आज अगर ये चुप रहे, यहूदियों ने कहा कि सारे बच्चे सब लोग शोर मचा रहे हैं, तो इनको कहो कि चुप हो जाएं। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर आज ये खामोश हुए तो पत्थर चला उठेंगे, क्योंकि उस दिन वो 62वां हफ्ता पूरा होने को था। उसी वो हफ्ता मसीह का था, वो हफ्ते को उसी दिन से पकड़ा जाने को था वो। तो क्यों ये कहा गया कि तारीख को ना माना जाए? क्योंकि तारीख को नहीं माना जाएगा तो 62 हफ्तों का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा, और मसीह की जिंदगी, मसीह की पैदाइश का सिलसिला सारे का सारा एक ख्याली परियों की कहानियों वाली बात बन जाएगी। और जब परियों की कहानियों वाली बात बन गई तो ये जरा अंदाजा करो, आज भी कोई किताब, कोई बादशाह, कोई वजीर, कोई वाकया, उसका तारीख, उसकी तारीख खत्म कर दो तो वो समझ लो कि किस्सा तमाम हो गया। वो तारीख अगर खत्म कर दी, तारीख जो है वो ही मसीहत की जड़ है। तारीख से ही, जिस तारीख सच्चाई को साबित करती है, और रूमी हुकूमत उस वक्त की सुपर पावर थी, और रूमी हुकूमत सुपर पावर थी, और मसीह का जो सारा जो अमल दखल है, जो उसकी कुर्बानी का, उसके कत्ल का, उसके मारे जाने का, उसके पैदा होने का, सलीब पर चढ़ाए जाने का, मुर्दों में से जी उठने का, ये सारे का सारा अमल दखल तारीख पर है। और जिस तारीख के पीछे रूमी हुकूमत है, और रूमी हुकूमत के पीछे उनका मजहब नहीं है, क्योंकि वो मजहब को जानने वाले नहीं थे, उनका एक अपना मजहब था, वो यहूदी नहीं थे, इसलिए उन्होंने यहूदी ना होने के सबब से, अपनी बादशाहत को कायम रखने के सबब से ये तमाम वाकयात लिखे। क्योंकि मसीह का नबी के तौर पे लिखा नहीं गया, मसीह का एक बागी के तौर पे लिखा जा रहा था। और आज भी जो बागी होते हैं, जैसे बिन लादन की बातें हैं, जैसे और लोगों के जो हुकूमतों के खिलाफ हैं उनके, वो बागी तौर पर बागियाना रवैये की तारीख लिखी जाती है, और उनको लाजमी तौर पे लिखा जाना चाहिए था, ताकि लिख कर बताया जाए फलां के दौर में फलां वक्त ऐसा हुआ, आइंदा से अलर्ट रहो ताकि ऐसे लोग दोबारा पैदा ना हो, ऐसे लोग दोबारा से रोनमा हो ना हो, ऐसे लोग दोबारा से अबतरी पैदा करने वाले ना हो। तो इसलिए मेरे दोस्तों, टाइम जो है बड़ी तेजी से गुजर रहा है। टाइम बार बार इस बात की आगाही देता है कि होश के नाखन लें, हम हर किसी की बातों में ना फंस जाएं। जैसे वो पंजाबी में कहते हैं, जिन्हें लाया गली ओदे नाल टुर चले। जिसने बात की इतने सालों से मना रहे हैं, आज भाई वो कह रहा है ना मनाओ। अच्छा भाई जी बताइए क्यों ना मनाए? इसमें तेरा मुफाद क्या है? इसमें तेरी हिकमत क्या है? इसमें तेरा क्या शऊर है? इसमें क्या तेरी अकल है? तू जो ये जो 22 सच्चाइयों पर तू पानी फेरना चाहता है, इसमें तेरा क्या लोभ है? इसमें तेरा क्या मुनाफा है? इसमें तेरा क्या लालच है? अगर कुछ भी नहीं है तो ये देख के यहूदी रवायत और जो दुनिया के वाइज लोग थे, जिनकी हुकूमतें निकली, तहकीक की गई, ये खुदा का कलाम जो है ये बजाते खुद एक मौजजा है। खुदा का कलाम बजाते खुद एक सच्चाई है, अगर خدا کا کلام بذات خود ایک سچائی ہے۔ اگر مسیح کی پیدائش کا اس میں سے ذکر نکال دیا جائے تو اندازہ کرو کہ 22 پوائنٹ ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر مسیح کی پیدائش کا ختم کر دیا جائے تو اس کو کس کو پکڑ کے لائے تھے، کس کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا، کہاں پر وہ گیا؟ اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے، بہت قربت چاہیے، بڑی فرینکنس چاہیے، بڑے ایک دوسرے کے ساتھ فری ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس پر بحث کریں، اس پر بات کریں، بیٹھیں، سوچیں اور پھر اس کو اتنا زیادہ منائیں، اتنا زیادہ منائیں کہ جو نہیں مانتے ان وہ شرم آئے ان کو کہ ان کی یہ پالیسی کو، ان کی اس بات کو، ان کی اس سوچ کو عقل مندوں نے سمجھ لیا ہے۔ یسوع مسیح نے ایک دم سے جواب دیا پترس کو، اے شیطان دور ہو، جو مسیح کے ہیں ان کے اندر مسیح کا روح ہے، اور جن کے اندر مسیح کا روح ہے وہ ایک دم سے اس بات کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں، ایک دم سے ان کا منہ بند کرنا چاہیے۔ اگر آج منہ بند نہ کیا گیا، آج ان لوگوں پر ثابت نہ کیا گیا کہ تم جو یہ جو سلو پوائزن مسیحت میں انجیکٹ کر رہے ہو، یہ تمہاری سیاست، تمہاری عقل، تمہاری بیوقوفی کو ہم سمجھ چکے ہیں، کیونکہ مسیح کسی بچے کے، کسی بادشاہ کے، کسی سلطنت کے، کسی چیز کی کریشن کے، کسی چیز کی موجودگی کے، کسی چیز کے وجود میں آنے کے دن کو، موقع کو، تاریخ کو اور اس کے عمل کو نہیں لکھا جاتا تو اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں۔ جب ہے ہی نہیں تو اس کو ماننے کی ضرورت کیا ہے، اور جب ماننے کی ضرورت نہیں تو پھر ایمان کوئی نہیں، اور جب ایمان ہی نہیں تو نجات نہیں، جب نجات ہی نہیں تو انسان ابھی تک بیابان میں پھر رہا ہے، جنگلوں میں پھر رہا ہے، کیونکہ جب مسیح کی پیدائش کی بات نہیں ہوگی تو وہ بھی وعدہ جو خدا نے سزا کے ٹائم پہ اما ہوا کو اور آدم کو دیا کہ وہ تیری نسل سے پیدا ہوگا اور تو وہ اس کی ایڈی پر کاٹے گا اور وہ اس کے سر کو کچلے گا، وہ کون ہے؟ پیدا ہوگا، کب ہوگا؟ اس دن کو پیدا ہوگا، کون سا دن ہے جو بغیر تاریخ کے ہے؟ کون سا دن ہے جو بغیر پہچان کے ہے؟ کون سا دن ہے جس کا نام نہیں؟ پہلے دن یہ ہوا، دوسرے دن یہ ہوا، تیسرے دن یہ ہوا، چوتھے دن یہ ہوا۔ اگر خدا یہ ٹرم کو یوز کرتا ہے تو جو کہتا ہے اس کو نہ مانو، اس کا مطلب ہے وہ تو خود بھی نہیں، اس کو تو خود بھی پتا نہیں ہے کہ تاریخ کا، اگر خدا اس ٹرم کو یوز کرتا ہے، ایک دو تین چار چھ، چھٹے دن یہ ہوا، ساتویں دن خدا نے آرام کیا، تو وہ سات کی بات کو جاننا میرے دوستوں، میرے عزیزوں بہت ضروری ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہم سب اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ میرے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے میرا دل، میرا ایڈریس، میرا ای میل ایڈریس، میرا فون اویلیبل ہے، خوشی کے ساتھ رابطہ کریں۔ اگر کوئی الجھن ہے، کوئی بات ہے، تو جس حد تک میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر، کیونکہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، کر سکتا ہوں، لیکن عالموں کا عالم، علم کل خدا کا پاک روح ہے، اور وہ انہیں کو بتائے گا جو اس کے ہیں، کیونکہ رومیوں کے خط میں لکھا ہے روحانی آدمی روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے اور جسمانی آدمی جسمانی باتوں کے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ جن میں خدا کا روح بسا ہے وہ ان باتوں کو سمجھیں گے، جن کا خدا کے روح کے ساتھ تعلق نہیں وہ سمجھ نہیں سکتے، ان کو ہم سمجھا نہیں سکتے، نہ ہم ان کے ساتھ سختی کر سکتے ہیں، صرف دعا کر سکتے ہیں کہ خدا باپ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو سمجھا سکیں، اگر نہ سمجھا سکے تو ہم ان سے کنارہ کر سکیں، اور اگر کنارہ نہیں کر سکتے تو ہم ان سے تعلق تو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ تعلق ختم کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن خدا کا روح ہمیں اس بات کی طاقت دے سکتا ہے، کیونکہ جو مسیح کی مخالفت کرتا ہے، جو مسیح کے کلام کی مخالفت کرتا ہے، جو مسیح کے الہام کی مخالفت کرتا ہے، جو خدا کے کلام کی مخالفت کرتا ہے، جو فرشتوں کی کے پیغام کی مخالفت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ تو بائبل کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا نکتہ ہے، اس دن کو نہ مناؤ، خدا کہتا ہے مقدس محفل فراہم کرو، خدا کہتا ہے ایک دن مقرر کر لو، خدا کہتا ہے تم نے یہ عیدیں خود مقرر کی، خدا کہتا ہے مجھے راحت انگیز خوشبو سے شادمانی ہوتی ہے، اور راحت انگیز خوشبو جو ہے جو راحت پہنچاتا ہے، جو خوشی، کیا یہ دن جو ہم کرسمس کا مناتے ہیں اس، یہ خدا کی راحت کا کی خوشبو ہے، پوری دنیا میں ولولہ ہے، انجوائمنٹ ہے، خوشی ہے، گناہ کی تبلیغ نہیں ہوتی، برائی کی تبلیغ نہیں ہوتی، یہ اس دن صلح کی، خوشی کی، تازگی کی، گفٹ دینا، گفٹ لینا، بھول جانا، معاف کرنا، اس کی تبلیغ ہوتی، اس کا کون ہے جو ان چیزوں کے خلاف ہے؟ یہ سوال آپ کے سامنے، کون ہے جو صلح کے خلاف ہے؟ یہ آپ پر سوال ہے، کون ہے جو خوشیوں کا مخالف ہے؟ یہ آپ کے سامنے سوال ہے، کون خدا کے کلام کی مخالفت کرتا ہے؟ یہ سوال آپ کے سامنے ہے، ان کے جواب خود ڈھونڈیے، ان کے جواب دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈھونڈیے، ان کے سوال روح القدس کے سامنے انکساری کے ساتھ بیٹھ کر پوچھئے کہ اے خدا پاک رو مجھے سکھا، تاکہ ہم جتنا وقت یہ ہمارا دنیا میں ہے ہم اس کو خوشی کے ساتھ منا سکیں، انجوائے کر سکیں، بے شک ہر دن خدا کی یاد کا ہے، بے شک ہر دن، لیکن اگر ہم ہر دن اس کو کہیں وہ پیدا ہوا تو لوگ کہیں گے یہ سائیکو ہے، پاگل ہیں، ہر روز ان کا مسیح پیدا ہوتا ہے، بے شک اس کے سب دن ہیں، پر ہر دن کی ایک ویلیو ہے، بائبل اس کے بارے میں بتاتی ہے، اگر چاہتے ہو کہ سب چیزوں کا سوال ملے تو بائبل میں برابر اس کا بیان ہے، ہر دن کی ویلیو ہے، ہر دن کی طاقت ہے، ہر دن کی خوبصورتی ہے، ہر دن کی برکت ہے، ہر دن کی لعنت بھی ہے، جس دن تو نے میرا انکار کیا تو لعنتی ٹھہرا، جس دن تو نے ان عیدوں کو بنانا بند کیا تو مرے گا، جس دن تو نے اپنی پاکیزگی کو ختم کیا تو سزا پائے گا، یہ سات دن کی، جس دن، اور وہ کون سا دن ہے؟ جس دن، وہ دن کوئی بھی ہو، آئیے خدا آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو، جے مسیح کی۔